अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका से आज इसके अंतर्गत एक अद्भुत प्रसंग लिया गया है, जब शिवावतार भगवान बाबा ने अपने दैविक रहस्य को एक मांत्रिक के सामने स्पष्ट किया था।
सर्वज्ञ होने के कारण किसी भी खोई हुई वस्तु का पता बताना सत्य कुट सहज था। शिरडी बाबा के चरित्र में जिस प्रकार एक घटना की व्याख्या है, वैसी ही एक घटना का उल्लेख हम सत्य साई बाबा के विषय में भी पाते हैं। एक खोए हुए घोड़े का पता सत्या ने अपनी दिव्य दृष्टि से बता दिया। इसी कारण इस अवतार में भी वे बहुतों की आराधना के पात्र बनने गए। उर्वा कोंडा में एक मुस्लिम टांगे वाले का घोड़ा गुम हो गया था। किसी ने चुराया तो नहीं, कहीं किसी ने विष तो नहीं दे दिया, या स्वयं ही तो नहीं भागा। तरह तरह के तर्क वितर्क किए जाने लगे। रात दिन ढूंढते ढूंढते वह थक गए, किंतु घोड़ा लापता। टांगे वाला हताश हो गया जब किसी ने कहा, हाई स्कूल में एक दिव्य दृष्टि वाला बालक खोई चीजों का पता बताने में समर्थ है। चोर के नाम के प्रथम तथा अंतिम अक्षर भी वह बताता है। टांगे वाले ने स्कूल के फाटक के पास खड़े रहकर आने जाने वालों से सत्या का पता लगाया। सत्या ने कहा, गांव के बाहर ताड़ के बाग में तुम्हारा घोड़ा खड़ा है। टांगे वाला दौड़कर बाग में पहुंचा। सत्या के सत्य वचन के प्रमाण स्वरूप सचमुच इन सब बातों से अनभिज्ञ वह घोड़ा आराम से घास चर रहा था। उस दिन से कोई भी टांगे वाले क्यों ना हो, सत्या को देखते ही गाड़ी रोक उसे बैठा स्कूल या भाई के घर, जहां उसे जाना हो बिना मूल्य पहुंचाते थे। सत्या के टांगे में बैठने से वे सब अपने को भाग्यवान मानते। सन 1940 मार्च की 8वीं तारीख, संध्याकाल 7 बजे का समय, भूदेवी के मुख पर तिमिर का पटल फैल रहा था। स्वस्थ सत्या अचानक हा कहते हुए पैर का अंगूठा दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। भाभी बिच्छू बिच्छू चिल्लाई। सब जगह ढूंढने पर भी बिच्छू का पता नहीं लगा। सब भयभीत हो उठे। इसका विशेष कारण था सर्प के फन तले बसा वह गांव। उर्वा कोंडा के लोगों की धारणा थी कि उस विषैले वातावरण में सांप या बिच्छू के काटने पर विष द्रुत गति से शरीर में फैल जाने से प्राण बचने की कोई आशा नहीं रहती। समाचार पाकर शेषम राजू अपने मित्र के घर से भाग कर आए, किंतु तब तक सत्या ने आंखें खोल दी थी। दर्द का चिन्ह भी नहीं दिखाई देता था। उस रात सत्या भली प्रकार सोया। दूसरे दिन सायंकाल उसी समय सत्या फिर बेहोश हो गया। सांस रुकने लगी, आंखें चढ़ गई, होठ कांपने लगे। इन दिनों ऐसा प्रकरण हो जाए तो भक्तगण भयभीत नहीं होते, क्योंकि अपने भक्तों को अचानक आने वाले संकटों से बचाने के लिए अथवा किसी भी अंतिम घड़ी में उनको अपना दर्शन देने के लिए बाबा अपनी देह छोड़कर उन भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। यह सब जानते हैं, किंतु उस समय की उनकी निश्चेष्ट स्थिति को किसी ने समझा नहीं था और वह साध्य भी नहीं था। सब ने अपना अपना परामर्श दिया। देवी मोत्यालम्मा का कोप समझकर उसके मंदिर पर नारियल कपूर आदि सामग्री भेजी गई। थोड़ी ही देर बाद सत्या बोल उठा, ओ उस मोत्यालम्मा के मंदिर में नारियल के 3 भाग हुए हैं। वास्तव में उस मंदिर में फोड़े गए नारियल के 3 टुकड़े हुए थे। लोगों ने समझा बिच्छू का विष प्रबल हो रहा है। मंत्र तंत्र का प्रयोग किया गया। एक तांत्रिक बोला, इस घर में पिशाच है, यह बालक उसी से पीड़ित है। भली भांति विचार किए बिना मैंने यह मकान किराए पर क्यों लिया, कहकर शेषम राजू सिर पर हाथ रख बैठ गए। उस बालक के जीवन वैचित्र से अवगत लोगों ने दैविक चिन्ह कहकर अपना मत प्रकट किया, किंतु 2 दिन तक सत्या बिस्तर से उठ नहीं पाया। आगे चलकर लोग इसी प्रकरण को साईं प्रवेश मानने लगे। परंतु यह मत ठीक नहीं है। कुछ बुद्धिमान ऐसी व्याख्या करते हैं कि इस घटना के पश्चात ही वे साईं बाबा कहलाए, उससे पूर्व सत्य नारायण ही थे। बिच्छू के काटने से क्या आप साईं बाबा हो जाते हैं? ऐसा कहकर बाबा हंसते हैं और कहते हैं कि इन कथाओं का कोई मूल्य नहीं है। बाबा कहते हैं कि समयानुसार सन्निवेश परिपक्व होने पर तथा आसपास की जनता की मनोभूमि बदलने पर ही अपना परिचय का पूर्णतया स्पष्ट स्वरूप प्रकट करने का ही उनका संकल्प था। उस दिन उर्वा कोंडा में अपना निज स्वरूप प्रकट करने के प्रकरण में उन्होंने पहला अध्याय प्रारंभ किया। उस दिन से उनकी दिनचर्या विचित्र हो गई। वे कीर्तन गाते, स्त्रोतों का उच्चारण करते, अत्यंत कठिन संस्कृत समासयुक्त श्लोकों को उच्च स्वर में गाते, वेदांत तत्वों का वर्णन कर उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार वह 14 वर्षीय बालक महामहोपाध्याय के समान सब पर छा गया। शेषम राजू को संदेह हुआ, यह पागलपन है अथवा शिवलीला? बहुमत पागलपन की ओर ही हुआ। मां बाप को एक दीर्घ पत्र लिखकर किसी व्यक्ति के साथ भेजने का शेषम राजू ने निश्चय किया। उस व्यक्ति को प्रवास की राह समझाने लगे, साइकिल से अनंतपुर, वहां से बुक्कापट्टनम, मोटर बस में तथा फिर पैदल ही पुट्टपर्ती पहुंचना होगा। इसी समय उन्हें रोकते हुए उसके जाने की क्या आवश्यकता है, आधे घंटे में वे स्वयं ही यहां पहुंचने वाले हैं, बालक बोल उठा। उनके कथनानुसार माता पिता उर्वा कोंडा पधारे। सत्या के व्यवहार ने उन्हें भी डरा दिया। बालक बार बार अपना शरीर छोड़कर बेहोश हो जाता था और कभी महापंडित के समान प्रवचन करता था। पड़ोस में भागवत प्रवचन करने वाले शास्त्री महोदय अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, वह बालक इस प्रकार की टीका करता। एक दिन उन्हें इधर बुलाइए, वह सही अर्थ नहीं बता रहे हैं। इस प्रकार सत्या ने पास के लोगों से आग्रह किया, वाह भाई वाह, बित्ते भर का बालक, उसे कैसा ज्ञान! उसका कहना और आपका सुनना दोनों एक ही समान है। मेरी आयु कितनी है, मेरा पांडित्य कितना है, मैं यहां भागवत का पाठ कर रहा हूं, वह उस बालक ने वहां बैठकर कैसे सुन लिया? कम से कम इस बात पर तो ध्यान दिया होता, कहकर शास्त्री जी भड़क उठे। उसके माता पिता के संतोष के लिए आप कृपा कर वहां पधारिए शास्त्री जी। किसी के ऐसे नम्रतापूर्ण वचनों को सुन शास्त्री जी सत्य के समक्ष प्रस्तुत हुए। सत्या से चर्चा करने पर उन्हें समझ आया कि उनका संस्कृत श्लोकों का अर्थ कितना अनर्थपूर्ण था, किंतु सत्य उन्हें ऐसा छोड़ने वालों में से नहीं था। गरुड़ की सहोदरी कौन थी, प्रहलाद के सहोदर कौन थे, इस प्रकार पुराण इतिहास आदि के प्रश्नों से जब शास्त्री जी पूर्णतया थक गए, तब उन प्रश्नों के उत्तर सत्या स्वयं बताने लगा। बेचारे शास्त्री जी ने बुलाते ही न आने के अपराध के लिए क्षमा याचना कर चरण छू नमस्कार भी किया। अनंतपुर जिले के मेडिकल ऑफिसर एक दिन उर्वा कोंडा आए। समाचार पाते ही शेषम राजू अपने भाई की स्थिति समझाने उनके पास पहुंचे। सत्य की चिकित्सा करने वाले वैद्य से भी राय ली गई। अंत में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि बिच्छू के काटने का इस स्थिति से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब ने औषध सेवन विधि लिखकर पिलाने की आज्ञा दी, परंतु दवा का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप सत्या के महत्व का कैसे पार पा सकता था? क्या उनकी सुई की नोक में उस महान शक्ति पर प्रभाव डालने की शक्ति थी? शेषम राजू के एक मित्र ने एक मांत्रिक के शक्ति सामर्थ्य के विषय में बताया और कहा, यह अपने गांव का सौभाग्य है कि इतना बड़ा मांत्रिक यहां पधारा है, उसे बुलाकर मंत्र तंत्र का इलाज करना ही उचित होगा। इस राय को मान शेषम राजू ने मांत्रिक को बुलाया। मांत्रिक आया और घर में बैठ ओम ओम जप शुरू किया। तब सत्या, अरे मेरी ही पूजा करते हो, मेरी दया से ही दोनों समय भोजन पाते हो, फिर मुझे ही डराने का साहस करते हो, पैर पड़ो, हाथ जोड़ो और यहां से भागो, बोल उठा। मांत्रिक घबरा गया। उसके पैरों तले से धरती खिसकने लगी। दक्षिणा लिए बिना ही वह चल दिया। चलते समय शेषम राजू को देहरी के पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई भूत प्रेत बाधा नहीं, साक्षात भगवान ही तुम्हारे घर पधारे हैं, ऐसा कहकर चला गया।
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। भगवान बाबा की दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से आज इसके अंतर्गत दो एक अलौकिक प्रसंग प्रस्तुत किए गए थे।